नमस्कार भारत, तारीख 28 दिसंबर, दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। नोटबंदी पर बिहार के सभी जिलों में धरना देगा लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल, पर महागठबंधन में शामिल बाकी दल क्या करेंगे?
तीनों दल अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से, अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से स्वतंत्र तौर पर कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र हैं।
बीबीसी हिंदी की वर्षांत पेशकश, हिंदी के मशहूर कवि नागार्जुन पर, जिन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थ को जीवंत कर दिया।
हम दो स्थितियों में कविता के प्रति झुकते रहे, या तो हम गुस्से में हों सामाजिक विकृतियों के कारण, हमारे मन में बदबदाहट हो, या फिर सहज हों हम।
कार्यक्रम में होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अपूर्व कृष्ण से। नोटबंदी को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के सभी जिलों में धरना आयोजित किया है, मगर बिहार में उनकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि वो धरने में शरीक नहीं होगी। उधर बैंक अधिकारी और कर्मचारी भी नकदी की कमी से होने वाली परेशानी को लेकर आज से 2 दिवसीय धरना आयोजित कर रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पर्ल हार्बर में मारे गए अमरीकी सैनिकों की याद में बने एक स्मारक पर श्रद्धांजलि दी है। 75 साल पहले यहां एक नौसैनिक अड्डे पर जापान के अचानक किए गए हमले में 2000 से ज्यादा अमरीकी नौसैनिक और मरीन सैनिक मारे गए थे। शिंजो आबे इस स्मारक पर जाने वाले पहले जापानी नेता हैं। उन्होंने कहा कि वो यहां आकर निशब्द हो गए। हमें युद्ध की विभीषिकाओं को कभी भी दोहराना नहीं चाहिए। हम जापान के लोग ये प्रण लेते हैं। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के शब्द। अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडेज द कर्चनर को एक निजी कंपनी ऑस्ट्रल में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाया गया है। इस कंपनी को उनकी सरकार से काफी लुभावने ठेके दिए गए थे। ब्यूनस आयर्स में एक जज ने उन पर लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हुए उनकी $60 करोड़ की निजी संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया। पिछले साल सत्ता से बाहर होने वाली क्रिस्टीना फर्नांडेज ने कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप एक ऐसी कानूनी कार्रवाई है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में तानाशाह अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन के लिए करते हैं। रविवार को दुर्घटनाग्रस्त होने वाले रूसी सैन्य विमान का एक ब्लैक बॉक्स काले सागर में मिला है, जिसे जांच के लिए मॉस्को भेज दिया गया है। रूसी परिवहन मंत्री मैक्सिम सोकोलोव ने उम्मीद जताई कि इससे पता चल पाएगा कि सोची से रवाना होने के कुछ ही मिनटों बाद ये विमान कैसे गिरा, जिससे इसमें बैठे 92 लोगों की मौत हो गई। अभी कुछ भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, मगर हम कई संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही दूसरे फ्लाइट रिकॉर्डर्स को भी खोज पाएंगे। रूसी परिवहन मंत्री मैक्सिम सोकोलोव के शब्द। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा है कि तथाकथित इस्लामिक स्टेट गुट को खत्म करने में 3 महीने लगेंगे। इससे पहले इस्लामिक स्टेट ने कहा था कि उसके बचे हुए महत्वपूर्ण गढ़ मोसुल में अंतिम कारगर पुल अमरीकी हवाई हमले में नष्ट हो गया है। उन्होंने इस पुल की तबाही का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि इससे उनका जीवन और कठिन हो गया है। इसमें कुछ लोग नावों से दजला नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं। क्यूबा की संसद ने सर्वसम्मति से पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो की याद में किसी भी इमारत, रास्ते या स्मारक का नाम रखे जाने पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। फिडेल कास्त्रो की पिछले महीने मौत हो गई थी। क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने कहा कि उनके भाई व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे और उन्होंने खास तौर पर आग्रह किया था कि इस बारे में संसद में प्रस्ताव लाया जाए। स्टार वॉर्स फिल्मों में प्रिंसेस लेया का किरदार निभाने वाली अमरीकी फिल्म स्टार कैरी फिशर का निधन हो गया है। कुछ दिनों पहले लंदन से कैलिफोर्निया जा रही एक उड़ान के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 60 वर्षीय अभिनेत्री ने लॉस एंजल्स में एक अस्पताल में आखिरी सांसें ली। स्टार वॉर्स फिल्मों में उनके साथ काम करने वाले अभिनेता हैरिसन फोर्ड ने उन्हें अपनी तरह का अलग, शानदार और मौलिक कलाकार बताया है। कनाडा में वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें इस बात के प्रमाण मिले हैं कि उत्तरी अमेरिका के इंडियन लोग लगभग 4000 साल पहले आलू उगाया करते थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्हें कागजी कबीले के पूर्वजों के इलाके में एक डूबी झील में सैकड़ों सुरक्षित जड़ें मिली हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित इस जगह का पता वहां सड़क बनाते वक्त चला था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत से। नोटबंदी को लेकर यहां राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है। दिल्ली में कल कांग्रेस की अगुवाई में करीब 6 राजनीतिक दलों ने बैठक की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल पूछे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून से विपक्ष पर हमला किया। आज राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के सभी जिलों में धरना देने का ऐलान किया है। उधर बैंक अधिकारी व कर्मचारी भी नकदी की कमी से होने वाली परेशानी को लेकर आज से 2 दिवसीय धरना आयोजित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ है प्रभात पांडे।
नोटबंदी के खिलाफ ट्विटर पर लगातार सक्रिय राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज पटना में धरना देंगे। राष्ट्रीय जनता दल का धरना कार्यक्रम राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे कहते हैं,
नोटबंदी के चलते, नोटबंदी के कारण सभी तबका में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे बिहार में जो जिला मुख्यालय है, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नोटबंदी के खिलाफ विशाल धरना का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर अब पटना में जो धरना आयोजित है उसमें स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी बैठेंगे।
पूर्वे के मुताबिक धरने के जरिए 3 प्रमुख मांगे उठाई जाएंगी और इन्हें जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।
किसानों का कृषि ऋण को माफ किया जाए। दूसरा है जो छोटे मोटे कारोबारी थे जिनका कारोबार समाप्त हो गया है उनको कम से कम 50,000 रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाए। और जो 105 व्यक्ति शहीद हो गए हैं उन लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।
धरने में बिहार के महागठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस शामिल नहीं होंगे। उधर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी नोटबंदी को लेकर हो रही दिक्कतों के विरोध में बुधवार से 2 दिवसीय विरोध कार्यक्रम का ऐलान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकट चलम कहते हैं,
डिमोनेटाइजेशन स्कीम के बाद प्रॉब्लम चल रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। रिजर्व बैंक का वो नोट सप्लाई बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है। कस्टमर लोग, पब्लिक लोग, उनको पैसा देने का स्टॉक नहीं है। 20-30% सप्लाई आ रहा है, इसलिए हमारा डिमांड है वो एडिक्वेट कैश रिजर्व बैंक सप्लाई करना है।
वेंकट चलम कहते हैं कि बैंक शाखाओं में कैश नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं कि 10 करोड़, 20 करोड़ और 40 करोड़ के नए नोट पकड़े गए। इसे लेकर लोग बैंक कर्मियों पर सवाल उठाते हैं। सरकार को इस मामले की CBI से जांच करानी चाहिए। अधिकारी और कर्मचारी यूनियनों का दावा है कि धरने से बैंक के कामकाज पर असर नहीं होगा। सभी कर्मचारी काम खत्म करने के बाद ही धरना देंगे।
प्रभात पांडे की रिपोर्ट आप सुन रहे थे। जनता दल यूनाइटेड बिहार के महागठबंधन में शामिल है, लेकिन वो RJD के धरना कार्यक्रम में शरीक नहीं होने वाला। क्या है इसकी वजह? हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने JDU सांसद KC त्यागी से यही सवाल पूछा।
जनता दल यू, RJD और कांग्रेस विभिन्न राजनीतिक विचारधारा की पार्टी। हमारा बिहार में सुशासन का राज कायम करने और गुड गवर्नेंस देने के लिए और भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए समझौता हुआ है। तीनों दल अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से, अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से स्वतंत्र तौर पर कार्यक्रम करने के लिए स्वतंत्र है।
कांग्रेस ने आज जो मीटिंग बुलाई थी उससे भी जनता दल यूनाइटेड ने दूरी बनाए रखी। इसको डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर एक तो विपक्षी एकता में दरार के तौर पर देखा जा रहा है, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड को भी देखा जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन पर आप विपक्ष के साथ नहीं दिख रहे हैं।
हमें क्यों? ST, BSP, NCP, समूचा लेफ्ट, JDS, JDU, अन्ना DMK, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कितनी पार्टी में आपको गिनवाऊं? कोई पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई है। इस तरह से जल्दबाजी में बगैर किसी ठोस बैकग्राउंड के, बगैर किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के, बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी तैयारी के विपक्षी एकता की बैठक आयोजित नहीं की जाती।
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की अब बात हो रही है, तो क्या आपको आगे की संभावनाएं दिखती है? क्या विपक्ष
अगर हमारे पार्टी के नेतृत्व से अन्य विपक्षी दलों से कोई मसौदा तैयार करने में मदद ये दल, पार्टी या व्यक्तियों के समूह लेंगे तो हम विपक्षी एकता के सबसे बड़े अलंबरदार हैं। 50 दिन का हिसाब मांगने का विपक्षी दलों को अधिकार है और जनता दल यू भी हमारे जो अध्यक्ष हैं वो देर सवेर अपनी पार्टी की मीटिंग बुला करके हम भी एसेस करेंगे, हम भी मूल्यांकन करेंगे कि जो समय सीमा तय की गई थी क्या वो पूरी हुई।
ये थे जनता दल यूनाइटेड सांसद केसी त्यागी। उधर भारतीय जनता पार्टी बिहार में आरजेडी के धरने पर सवाल उठा रही है। हमारे सहयोगी वात्सल राय से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा,
लोकतंत्र में किसी को भी अधिकार है अपनी बात कहने का।
नोटबंदी से विपक्ष क्यों घबराया हुआ है ये समझ में नहीं आता। लालू यादव जी सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। मायावती का तो समझ में आ गया कल है 104 करोड़, इनका क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। और बिहार में जो सरकार चल रही है आधे उनके मुखिया नीतीश कुमार नोटबंदी के पक्ष में है, बेनामी कानून के पक्ष में है, ये अंतर विरोध सा दिख रहा है। अगर भारत बंद टाई टाई फिस से भी जनता का मूड नहीं समझ में आया है, जनता इस बार कष्ट सह करके भी जनता ने नरेंद्र मोदी को साथ दिया, यानी देश का गरीब मजदूर नौजवान देश कष्ट सह के साथ दिया है, अब इन लोगों को तकलीफ क्या है। एक बार बंद फ्लॉप हो गया, धरना देंगे 28 तारीख से, इससे क्या असर पड़ेगा।
उनका यह कहना है कि लोगों को बड़ी दिक्कत है और 50 दिन की जो मियाद प्रधानमंत्री ने मांगी थी लोगों से वो भी पूरी होने जा रही है और समस्याएं अभी तक सुलझी नहीं है।
समस्या केवल लालू यादव जी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी का नहीं सुलझा है, मायावती का। जनता की समस्या सुलझ रही है और सुलझाने में जनता कष्ट सह करके भी मोदी जी के साथ है।
गिरिराज सिंह की आवाज आप सुन रहे थे और यहीं पर कार्यक्रम में अखबार के अब पन्ने पलट लेते हैं। पूर्व अखबार तो आप छान चुके हैं, क्या कह रहे हैं अखबार?
जी मोहनलाल, नोटबंदी फिर से आज सुर्खियों में है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसने एक रिपोर्ट छापी है कि प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के ऐलान के बाद 500 और 1000 के पुराने नोटों में से 40 लाख करोड़ रुपए की राशि में से 14 लाख करोड़ तक की राशि बैंक में जमा की जा चुकी है। और अखबार के अनुसार ये सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा है, जिसे आशा थी कि 3 लाख करोड़ रुपए तक के नोट काले धन के तौर पर बैंकों में जमा नहीं हो सकेंगे। और इंडियन एक्सप्रेस है, उसने खबर छापी है कि बैंकों ने सरकार से आग्रह किया है कि वो कैश निकालने पर लगी सीमा को 30 दिसंबर से आगे भी जारी रखे, तब तक जब तक कि पर्याप्त मात्रा में नए नोट उपलब्ध ना हो सकें। अखबार के अनुसार सूत्रों ने उन्हें बताया है कि सरकार ने अनौपचारिक तौर पर बड़े बैंकर से इस बारे में राय मांगी थी और बैंकर्स ने वित्त मंत्रालय से कहा कि इस हफ्ते के ठीक बाद इस पाबंदी को हटा देने से बैंकों के कामकाज पर असर पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पैसे निकालने बैंकों में आ सकते हैं और ऐसी उम्मीद है कि सरकार इस बारे में शुक्रवार को घोषणा कर सकती है। और एक खबर इसमें है हिंदुस्तान में कि अब नोटबंदी के बाद बड़ी कार खरीदने वालों पर आयकर विभाग की निगाहें हैं। ऐसे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है जो आय के मुताबिक रिटर्न नहीं भरते या कर के दायरे से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने नोटबंदी के बाद महंगी कारें
बड़ी कारें चमकदार बड़ी कारें खरीदी हैं।
और एक खबर और हिंदू में अलग ये कि भारतीय ओलंपिक संघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में दागी सुरेश कलमाडी और भारतीय मुक्केबाजी संघ के विवादास्पद पूर्व अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को मानद आजीवन अध्यक्ष बना दिया है। अखबार का कहना है कि ये घटनाक्रम एक बड़े विवाद में तब्दील हो सकता है। अखबार के अनुसार संघ की वार्षिक आम बैठक के एजेंडा में इसका जिक्र नहीं था, लेकिन बैठक के अंतिम दौर में एक सदस्य ने इन नामों का प्रस्ताव किया और सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन कर दिया गया और संघ ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।
एक तस्वीर का जिक्र मैं करना चाहूंगा। दैनिक जागरण में तस्वीर है कि रनवे पर टकराने से दो विमान बच गए और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे पर दो विमान एकदम आमने सामने की तस्वीर अखबार ने छापी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व कृष्ण आपका।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्स और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्स पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत और अब हमारी वर्षांत पेशकश। आज की प्रस्तुति हिंदी के मशहूर कवि नागार्जुन पर, जिन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थ को जीवंत अभिव्यक्ति दी। साथ ही उन्होंने आज़ादी के बाद के राजनीतिक माहौल पर खुलकर अपनी कलम चलाई। नागार्जुन की दृष्टि लोक जीवन के ऐसे पहलुओं पर गई जिसे अन्य कवि साधारण बात समझकर छोड़ देते थे। दंतुरित मुस्कान, सिंदूर, तिलकित भाल और गुलाबी चूड़ियां जैसी कविताएं ऐसी ही काव्य अभिव्यक्तियां हैं। नागार्जुन को पत्रहीन नग्न गाछ नामक मैथिली रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। बीबीसी संवाददाता जसविंदर सिंह ने नागार्जुन से खास बातचीत की थी। उसी बातचीत पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट सुनिए दिव्या आर्य से। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद।
ये पंक्तियां हैं कवि नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की। अकाल की विभीषिका इस छोटी सी कविता में जितने जीवंत रूप में सामने आती है, उसे कई पन्नों के गद्य में भी शायद ही समेटा जा सकता है। ऐसा ही था हिंदी और मैथिली के मशहूर कवि नागार्जुन का कविता संसार, जिसमें आजादी के बाद का उत्तर भारतीय जीवन अभिव्यक्ति पाता है। संभवतः 1911 में बिहार के दरभंगा में जन्मे नागार्जुन का असल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उन्होंने मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। बीबीसी संवाददाता जसविंदर सिंह के साथ एक साक्षात्कार में नागार्जुन ने बताया था कि उनकी रचना प्रक्रिया क्या है, यानी ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें कविता लिखने को प्रेरित करती है।
सहज उद्रेक होता है प्राकृतिक भावनाओं के लिए, राजनीतिक व्यंग्य सामाजिक स्थितियों की विषमता से उभरती है। तो ऐसा है कि हम दो स्थितियों में कविता के प्रति झुकते रहे, या तो हम गुस्से में हों सामाजिक विकृतियों के कारण हमारे मन में बदबदाहट हो, तब हम झुकते हैं तो वो कविता स्पष्ट नजर आती है, या फिर सहज हों हम कि नहीं प्यार का क्षण हो प्रकृति का क्षण हो, तो दो स्थितियाँ हैं। तो यह स्थिति होती है, ये इसमें साफ पहचान में आती है।
भारत की आजादी के बाद गरीबी और जहालत में जी रही जनता को उम्मीद थी कि देश के नेता उनका दुख दर्द समझेंगे, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन में खुशहाली आएगी। लेकिन बहुसंख्यक जनता ने आजादी को लेकर जैसे सपने देखे थे, वो उस रूप में पूरे नहीं हुए। लोगों ने महसूस किया कि सत्ता तो अब अंग्रेजों के हाथों में नहीं, बल्कि अपने लोगों के हाथों में है। लेकिन जीवन की परिस्थितियों में कोई खास तब्दीली नहीं आई। नागार्जुन ने लोगों का ये दर्द आओ रानी हम ढोएंगे पालकी कविता में व्यक्त किया। ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1961 में भारत की यात्रा करने वाली थी।
आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, राय हुई है यही जवाहरलाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। यह तो नई नई दिल्ली है, दिल में इसे उतार लो, एक बात कह दूं मलका थोड़ी सी लाज उधार लो, बापू को मत छेड़ो अपने पुरखों से उपहार लो, जय ब्रिटेन की जय हो इस कलिकाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पाल।
देश की राजधानी को नई नई दिल्ली कहने वाले नागार्जुन बताते हैं कि उन्होंने देश के राजनीतिक माहौल पर कटाक्ष करने वाली कविताएं यूं ही नहीं लिखी थी, बल्कि वो कविताएं आम लोगों के जीवन यथार्थ को समझने के कारण ही निकली थी।
राजनीति का आग्रह कोई जानबूझ कर नहीं आया, किसानों मजदूरों के बारे में या नौकरी पेशा जो मध्यम वर्ग है उसके प्रति सहानुभूति को व्यक्त करते हुए, या जहाँ कहीं हम तीखे हो जाते हैं तो उसका मतलब अकारण वो तीखापन वो उड़ते नहीं हैं, वो सहज आता है, उसके लिए हमको कोई पछतावा नहीं होता।
आजादी के बाद लोगों को उम्मीद थी कि देश में शिक्षा का प्रसार होगा, गांव-गांव के बच्चे अच्छी तालीम पाकर स्वावलंबी हो जाएंगे। लेकिन ग्रामीण शिक्षा की जो दशा नागार्जुन ने देखी, उससे उन्हें घोर निराशा हुई और उन्होंने दुखरन मास्टर नाम की कविता लिखी।
घुन खाए शहतीरों पर की बारा खड़ी विधाता बाचे, कटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में पांच तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम के सांचे।
नागार्जुन का कवि हृदय सिर्फ देश के किसानों, मजदूरों की दशा और राजनीतिक माहौल को देखकर ही नहीं जागा, बल्कि उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का भी बेहद काव्यात्मक चित्रण किया। बर्फ पड़ी है, ऋतु संधि, मेघ बजे, फूले कदम्ब उनकी ऐसी ही कविताएं हैं जहां प्रकृति के मनोहारी सौंदर्य को उन्होंने शब्दों में बांध एक नया सौंदर्य दे दिया है। बादल को घिरते देखा है उनकी एक मशहूर कविता है, वो खुद इसके बारे में बताते हैं।
शिमला वाले एरिया में घूम रहे थे, सतलज के किनारे किनारे हम तिब्बत के बॉर्डर तक चले गए, जहाँ देवदार के जंगल हमको मिलते थे, उसका इसमें चित्रण आया ये है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा। इस तरह के कई टुकड़े हैं।
हिंदी साहित्य में नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहकर पुकारा जाता है, जिन्होंने कबीर की तरह ही समकालीन अव्यवस्थाओं, विषमताओं, समस्याओं और कुरीतियों पर कविता के माध्यम से हमला किया। नागार्जुन की कविता अपने तरह की अलग कविता थी, जिसे किसी दूसरे बड़े कवि से प्रेरित नहीं कहा जा सकता, वो खुद भी कहते हैं।
यह हमारा संयोग था, शुभ कहना चाहिए, कि हम हिंदी में किसी कवि से हम प्रभावित नहीं हुए। हम शुरू में संस्कृत से हम आए, बाद में हमारे तो अब ये है कि चूँकि हम ये मानते हैं कि एक खेतिहर किसान जो है वो हमारा अच्छा गुरु हो सकता है। कविता खाली निराकार नहीं होती है, कहा नहीं हमने कि भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं हुआ करती, भाषा माने वो जीवन।
हालांकि नागार्जुन पर आरोप भी लगे कि वो सत्ता के कथित उत्पीड़क और गरीबों की अवहेलना करने वाले चरित्र के खिलाफ आवाज तो उठाते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर शासन से पुरस्कार लेने में परहेज भी नहीं करते। नागार्जुन इमरजेंसी के खिलाफ थे, उन्होंने इंदिरा जी की जमकर निंदा की थी, लेकिन एक बार जब उनके हाथों से उन्होंने पुरस्कार ग्रहण किया तो उनकी आलोचना भी हुई थी। उन पर जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ खड़े होने पर भी उंगली उठाई गई थी।
इंदिरा से सम्मान ग्रहण किया वह एक आंशिक सत्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है उसके द्वारा आयोजित था, और वो था कि देश के जो सर्वोच्च राजनीतिक प्रतिनिधि इंदिरा गांधी, उनके हाथों से वो पुरस्कार दिलवाया। महादेवी जी थे, हम भी थे, वो तो राष्ट्र का था, वो एक प्रतीक के रूप में थी, वहाँ से पहुँच गई थी, हम भी पहुँचे। इसलिए और ये रही बात जेपी वाले आंदोलन में हमारे शामिल होने की, ये थी कि हमने ये देखा यह व्यक्ति बावजूद अपने अंतर विरोधों के इस वक्त इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ खड़ा है। तो हम बिल्कुल शामिल, हमने कहा चौराहे पर हम खड़े हुए, चौराहे पर हमने कविताएं सुनाई, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को उतार दिया, भूल गई बाप को, क्या हुआ आपको। जब मोह भंग हुआ तो हमने अपने को विथड्रॉ कर दिया, क्योंकि मोह भंग तब हुआ जबकि जेल के अंदर हम गए और उसमें 70% जो है RSS वाले होते थे, 10% समाजवादी होते थे, 5-7% वामपंथी होते थे, CPM पंथी। ये परसेंटेज देखा तो हमारा मोह भंग वहाँ हुआ। मैंने कहा ये सारा आंदोलन जो है JP का, ये RSS वाले नौजवानों के कंधे पर चल रहा। तो हमने कहा ये कहाँ कल्याण करेगा, जैसे हमको वहाँ मोह भंग हुआ जेल में।
इन आलोचनाओं के बावजूद नागार्जुन बेजोड़ जन कवि थे। उन्होंने आए दिन बाहर के, शासन की बंदूक, कर दो वमन जैसी तमाम ऐसी कविताएं लिखी जिसने आजाद भारत के यथार्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा था। उनकी ऐसी ही एक कविता है, बाकी बच गया अंडा।
पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए चार, चार पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए तीन, तीन पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक अब बाकी बच गए दो, दो बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से बाकी बच गया एक, एक पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़ के जेल ले गई बाकी बच गया अंडा।
नागार्जुन का मानना था कि सरकार के संरक्षण में रहकर साहित्य की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। वो ऐसे साहित्यकारों के खिलाफ रहे जो सत्ता का संरक्षण पाने के लिए, सत्ता का अनुग्रह पाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, और इसीलिए नागार्जुन सरकारी आयोजनों से भी दूरी रखना चाहते थे।
वाजपेयी का व्यक्तिगत महत्व बढ़ता है उसे, भारतीय कविता का महत्व से नहीं बढ़ता, भारतीय कविता का महत्व वहाँ से बढ़ता है जहाँ हम कहते हैं बस्तर के जंगलों में आदिवासी जो है वो जब गाता है वहाँ चांदनी रात में जो गाता है, उसमें हम समझते हैं उसमें काव्य बीज हमको मिलते हैं, यहाँ तो काव्य बीज नहीं मिलेंगे नहीं, बस्तर के जंगलों में ये आदिवासी क्षेत्र यहाँ ये मुंडा उरांव ये रांची में ये संताल लोग हैं इनके, तो उनके बीच में बीच बीच में हमको ये होता है कि हमारे जैसे लोगों को ताजगी हासिल करने के लिए उनके बीच में जाकर रहना चाहिए।
नागार्जुन ने कविताएं ही नहीं लिखी बल्कि बलचन्मा, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची और बाबा बटेसरनाथ जैसे चर्चित उपन्यास भी लिखे। जन सामान्य के जीवन और उनके सुख दुख के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ जैसी कविता लिखने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को निधन हो गया, लेकिन उनका कालजयी साहित्य हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
BBC की वर्षांत प्रस्तुति आज नागार्जुन पर थी, और हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक महीने से पूरे भारत की राजनीति में एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वो है नोटबंदी का। यदि आप हमारे कार्टूनिस्ट कृतिश की कलम से कार्टूनों का आनंद उठाना चाहते हैं, व्यंग का आनंद उठाना चाहते हैं, तो bbchindi.com पर एक कोना है कार्टून का कोना, जिस पर आप कृतिश की कलम से बने कार्टूनों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
नोटबंदी को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के सभी जिलों में धरना आयोजित किया है, मगर बिहार में उनकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि वो धरने में शरीक नहीं होगी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पर्ल हार्बर में मारे गए अमरीकी सैनिकों की याद में बने एक स्मारक पर श्रद्धांजलि दी है। शिंजो आबे इस स्मारक पर जाने वाले पहले जापानी नेता हैं। अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस द कर्चनर को एक निजी कंपनी ऑस्ट्रल में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाया गया है। रविवार को दुर्घटनाग्रस्त होने वाले रूसी सैन्य विमान का एक ब्लैक बॉक्स काले सागर में मिला है, जिसे जांच के लिए मॉस्को भेज दिया गया है। और स्टार वॉर्स फिल्म में प्रिंसेस लेया का किरदार निभाने वाली अमरीकी फिल्म स्टार कैरी फिशर का निधन हो गया है। कुछ दिनों पहले लंदन से कैलिफोर्निया जा रही एक उड़ान के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। दिन भर कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।